नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले 2022-23 में बढ़कर 13,530 हो गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को इस बारे में आंकड़े जारी किए। धोखाधड़ी के इन मामलों में शामिल कुल राशि 30,252 करोड़ रुपए थी, जो इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले करीब आधी है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 में कहा गया कि मात्रा के लिहाज से धोखाधड़ी मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान की श्रेणी में हुई। यदि मूल्य के लिहाज से बात करें तो मुख्य रूप से ऋण पोर्टफोलियो में सबसे अधिक धोखाधड़ी की सूचना मिली। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में कुल 9,097 धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आए, जिसमें 59,819 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी। इससे पहले 2020-21 में धोखाधड़ी के 7,338 मामलों में शामिल कुल राशि 1,32,379 करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया है, पिछले 3 वर्षों में बैंकों के धोखाधड़ी के मामलों के अध्ययन से पता चलता है कि संख्या के लिहाज से निजी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी की अधिक सूचना दी, जबकि मूल्य के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अधिक धोखाधड़ी के मामले दर्ज कराए। भारतीय रिजर्व बैंक का बही खाता बीते वित्त वर्ष 2022-23 में 2.5% बढ़कर 63.45 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। केंद्रीय बैंक की मंगलवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। मुख्य रूप से आमदनी बढ़ने की वजह से रिजर्व बैंक के बही खाते का आकार बढ़ा है। केंद्रीय बैंक का बही खाता देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे मुख्य रूप से मुद्रा जारी करने के कामकाज के अलावा मौद्रिक नीति और आरक्षित कोष प्रबंधन उद्देश्य का पता चलता है। प्रेस्टीज असेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने मुंबई स्थित 2 निर्माणाधीन कार्यालय परिसरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 100% की है। इसके लिए कंपनी ने BD समूह से उसका हिस्सा 1,176 करोड़ रुपए में खरीदा। बेंगलुरु स्थित रियलिटी कंपनी की इन दोनों परियोजनाओं में 50% हिस्सेदारी थी और अब उसने DB समूह से बाकी 50% हिस्सेदारी खरीद ली। प्रेस्टीज समूह ने एक बयान में कहा कि उसने DB समूह की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करते हुए प्रेस्टीज रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और टर्फ एसेट ज्वाइंट वेंचर LLP का पूर्ण स्वामित्व हासिल कर लिया है। देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी ईंधन खुदरा विक्रेता नायरा एनर्जी ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों के मुकाबले 1 रुपए कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल बेचना शुरू किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटेन के उसकी साझेदार BP PLC पहले ही PSU कंपनियों के मुकाबले कम कीमत पर ईंधन बेच रही है। सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार में कटौती नहीं की। दूसरी ओर निजी ईंधन खुदरा विक्रेता इस गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। नायरा एनर्जी के एक प्रवक्ता ने कहा, घरेलू खपत को बढ़ावा देने और स्थानीय ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए हम जून 2023 के अंत तक अपने खुदरा बिक्री केंद्रों पर 1 रुपए की छूट दे रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ईंधन पर अधिक कर लगाकर मुनाफा कमा रही है। उन्होंने साथ ही जोड़ा कि ऐसा आम लोगों की कीमत पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कृत्रिम रूप से अधिक रखा गया, जो महंगाई बढ़ने की एक वजह है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2010 और 2014 के बीच राजग और संप्रग सरकारों ने पेट्रोल की कीमतों को विनियमित किया था। हालांकि सितंबर 2014 से विनियंत्रण सुधार बंद हो गया। चिदम्बरम ने कहा, 2014 और 2021 के बीच कच्चे तेल की कीमतें 60 अमेरिकी डॉलर से नीचे थीं। फिर भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने वाले लोगों को कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ नहीं दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मत्स्य पालन क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा निर्यात केंद्र बन सकता है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ये दावा किया। मंत्री ने कहा कि खास तौर से ग्रुपर्स, स्नैपर्स और टूना जैसी मछलियों का निर्यात काफी बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क और मालवहन सुविधाओं को बढ़ावा देकर इन मछलियों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने यहां एक साक्षात्कार में PTI भाषा को बताया, इस जगह में सबसे बड़ा निर्यात केंद्र बनने की क्षमता है। यहां आपको ग्रुपर्स और स्नैपर्स की बहुतायता मिलेगी। इनकी थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में काफी मांग है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि देश में 45 करोड़ टन सालाना रिफाइनरी क्षमता हासिल करने के लिए छोटे आकार की पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने पर विचार किया जा रहा है। उद्योग मंडल इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित ऊर्जा सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा, छोटी रिफाइनरियों के लिए चीजें आसान होती हैं, इसमें जमीन अधिग्रहण समेत अन्य बाधाएं नहीं होती। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रिफाइनरी लगाने की योजना अटकने के बीच उन्होंने ये बात कही। तीनों कंपनियों की महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 6 करोड़ टन सालाना क्षमता की रिफाइनरी लगाने की योजना है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिलहाल देश में रिफाइनरी क्षमता 25.2 करोड़ टन सालाना है। पुरी ने कहा, बड़े आकार की रिफाइनरी लगाना महंगा सौदा बन गया है। हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ टन तक सालाना क्षमता वाली रिफाइनरियों पर गौर कर रहे हैं। इतनी क्षमता की रिफाइनरी छोटी होती है। अगर हम बड़े आकार की रिफाइनरी लगाने की योजना बनाते हैं तब जमीन अधिग्रहण और अन्य मसले आएंगे। उन्होंने कहा, हमें 45 करोड़ टन सालाना क्षमता का लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटे आकार की रिफाइनरियों के साथ कुछ और नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।